नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
नेपाल में राजशाही बहाल करने और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है। बुटवल, पोखरा और जनकपुर से लेकर काठमांडू तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल में राजशाही खत्म हुए 15 साल हो चुके हैं और अब इसको बहाल करने की मांग क्यों हो रही है, और नेपाल और भारत के संबंधों के लिहाज से इसका कोई खास मतलब बनता है या नहीं, जानेंगे चंद्रभूषण जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्रभूषण जी, नेपाल में इलेक्टेड असेंबली ने 2008 में राजशाही खत्म करने का निर्णय किया था और अब 2023 में इसकी बहाली के लिए प्रदर्शन होने लगे हैं, ऐसा क्यों होने लगा है?
नमस्कार अखिलेश जी। ये जिस समय नेपाल में राजशाही का उन्मूलन हुआ था और गणतंत्र की स्थापना हुई थी, उस समय भी ऐसा कहा जा रहा था, इसकी एक आशंका जताई जा रही थी। ये राजशाही इतनी जड़ तक जमी हुई है नेपाल के अंदर, मैंने खुद वहां देखा है 1990 में 91 में कि किस तरह से राजा को विष्णु का अवतार मानते हुए और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सारी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराने का वहाँ चलता था, जो चुना हुआ पंचायती प्रथा का जो प्रधानमंत्री वहाँ हुआ करता था उसी को जिम्मेदार सारे लोग ठहरा रहे थे, जिस समय वहाँ बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन पहला चला हुआ था उस समय भी। तो पूरी तरह से जड़ से राजशाही समाप्त हो रही है या एक व्यक्ति ज्ञानेंद्र राजा हटाए जा रहे हैं, यह एक किस्म की दुविधा लोगों के अंदर भी थी। ये लोकतंत्र की सफलता पर, इसकी उपलब्धियों पर निर्भर करता है कि राजशाही को किस हद तक चुनौती दी जा पा रही है या वह धारणा जो लोगों के अंदर बनी हुई है, धारणाएं तो बहुत समय तक बनी रहती हैं। तो एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि यह नेपाली लोकतंत्र की एक किस्म की कसौटी भी है कि वह कितना अपने को जनता के लिए सिद्ध करता है। रही बात कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये राजशाही के वापसी के संकेत हैं, इसको इस रूप में मैं अभी नहीं देखता। ये इतने प्रबल, इतने ताकतवर अभी नहीं है, हालांकि जैसा कि आपने बताया कि कई जिलों में बड़े प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अभी इसको मैं इस रूप में नहीं देखता कि किसी बहुत गंभीर लोकतंत्र विरोधी आंधी वहां उठ खड़ी हुई है। अभी फिलहाल इसको इस रूप में मैं नहीं देख पा रहा हूँ।
जी, आपने कहा कि लोकतंत्र किस तरह डिलीवर करता है ये उसके सामने ये एक कसौटी रहती है। ये सिटीजन्स कैंपेन के कोऑर्डिनेटर हैं दुर्गा प्रसाई, और इस कैंपेन के तहत जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। उनका कहना है कि राजशाही खत्म होने के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं वो नेपाल का विकास करने के वादे पर खरी नहीं उतरी हैं, तो और इसलिए राजशाही बहाल की जानी चाहिए। वहाँ नेपाल में चंद्रभूषण जी बार बार सरकारें बदली हैं 2008 के बाद, 10 से ज्यादा बार सरकार बदल चुकी है वहां पर। कभी कोई आता है, अभी पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता का भी एक तरह से मोहभंग के पीछे वजह हो सकती है,
इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल के लिए और बार बार लोग इसकी चेतावनी भी दे रहे हैं जो नेपाल के राजनेताओं को, कि इतना आप हल्के में चीजों को मत लीजिए कि इस तरह से हर 6 महीने पर, साल भर पर सरकारें बदलती रहें, प्रधानमंत्री बदलते रहें, यह उचित नहीं है। इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा आप जो कह सकते हैं कि जमीनी तौर पर उद्योग धंधे खड़े होना या फिर डेवलपमेंट मॉडल कोई ऐसा जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिल सके, बहुत सारे लोगों को अपने विकास के रास्ते खुलते हुए नजर आए, वह भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं और जिससे कि बार बार लोगों में असंतोष देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि बहुत सारे जो काउंटरवेलिंग फोर्सेस भी जो हैं, जो कि इसके पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि नेपाल में उनकी कोई शक्ल दिखाई देगी, जैसे नेपाल में बुद्ध बौद्ध धर्म का एक चेहरा आज दिखाई दे रहा है, बहुत सारी जो ऐसे छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय, बहुत सारी जनजातियां जिनकी कोई शक्ल वहां नहीं बनती थी, उनके आज राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनकी पहचान है। तो नीचे जमीन पर जो लोकतंत्र की जो मथानी चलती है, जो बहुत तरह की शक्तियां निकल कर आती हैं, तो वो प्रक्रिया तो वहां चल रही है। तो आप जो बहुत सारी चीजें उदास करने वाली हैं, तो बहुत सारी चीजें उत्साह बढ़ाने वाली हैं जो ज्यादा करीब से दिखती हैं, अभी दूर से बहुत नहीं दिखती।
जी, ये भी कहा जा रहा है चंद्रभूषण जी कि नेपाल में चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके विरोध में ये राजशाही समर्थक एकजुट हुए हैं, क्या ये भी फैक्टर हो सकता है?
देखिए अखिलेश जी, ये चीज जो नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ने की बात है, कोई सीधी रेखा में यह प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि एक लगातार उसकी ताकत बढ़ रही है चीन की, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह प्रभाव ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला आता है, इस तरह का ही है। कोई प्रभाव नहीं है कि लगातार चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि नेपाल का जो उत्तरी हिस्सा है, जो ज्यादा जनजातीय हिस्सा है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही जो तिब्बत से सटा हुआ जो हिस्सा है, उसके तिब्बत की सीमा से 50-60 किलोमीटर भीतर, टोटल मान लीजिए 150 किलोमीटर की ही तो चौड़ाई वाला देश हुआ उत्तर से दक्षिण, तो उसमें जो 50 किलोमीटर जो हिस्सा जो चीन के करीब है, जो तिब्बत के करीब है, उन लोगों को लगता है कि तिब्बत मान चीन से हमारा रिश्ता खुले तो हमारा सामान ज्यादा तिब्बत जाएगा, हमारे रोजी रोजगार के रास्ते साफ होंगे। तो एक हिस्सा तो ऐसा है जो कि चाहता है कि तिब्बत से उनका ज्यादा सीमा खुले और चीन से ज्यादा नजदीकी बने नेपाल की, ऐसा एक हिस्सा तो जमीनी तौर पर चाहता है। कुछ एक राजनेता भी हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि शुद्ध अवसरवाद है, जैसा कि ओली का मामला है, वो एक बार बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि एकदम काठमांडू तक चीन की रेलवे लाइन बनवा कर ही रहेंगे, फिर तुरंत जब चीन के राजदूत ने कुछ स्टैंड लेना शुरू किया कि नहीं, वहाँ की जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी एकता नहीं टूटनी चाहिए, जिसमें कि उनको लगा कि उनका प्रधानमंत्री पद जा सकता है, तो अचानक उन्होंने उल्टा स्टैंड लिया और भारत में आके और एकदम भारत की एकदम बांसुरी बजाने लगे। तो इसको आप एक अवसरवादी नेता के ही उछलकूद कह सकते हैं। तो चीन का प्रभाव एक दिश रूप से बढ़ रहा हो सो तो बात नहीं है, लेकिन भारत का जो जिस तरह का दखल अभी तक था, कुछ समय पहले तक खासकर हिंदुत्व की राजनीति का जो दखल था, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लंबे समय तक नेपाल के राजा, वे सारी स्थितियां अब हट चुकी हैं। तो जो विशुद्ध हिंदुत्व की राजनीति करने वाली जो शक्तियां रही हैं नेपाल के अंदर, उनके लिए यह जरूर बहुत बड़ा इशू हो जाता है जैसे ही चीन से कुछ नजदीकी बढ़ती है, तो वो इस चीज को मुद्दा बनाते हैं और काफी मामला गर्म हो जाता है। लेकिन जो नेपाल के जो राजनेता हैं, धीरे धीरे उनको एक बात समझ में आ गई है कि एक एक पलड़े में जाकर बैठ जाना या तो चीन के या भारत के, इसमें उनका फायदा नहीं है। कोई बैलेंस बना के चलना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, यही एक आम मुहावरा नेपाल की राजनीति का हो सकता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही है, तो कुछ भूमिका इसकी जरूर हो सकती है, लेकिन चीन बहुत निर्णायक फैक्टर नेपाल की राजनीति में मुझे लगता है कि अभी नहीं है।
जी, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है इस वक्त प्रधानमंत्री हैं नेपाल में, गठबंधन सरकार चला रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं राजशाही बहाली के लिए, और इसी दिन जो है, दो दिन पहले जिस दिन ये विरोध प्रदर्शन तेज हुए, उसी दिन जो है नेपाल की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसने भी विरोध प्रदर्शन किया वहीं काठमांडू में, और वो कह रहे थे कि प्रचंड की जो सरकार है वो करप्ट है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। तो क्या ये मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है जो 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 हालात है इस वक्त?
कई सारे मामले बीच में सरकार को लेकर, नेपाल सरकार को लेकर या प्रचंड के समर्थक दलों को लेकर भ्रष्टाचार के इधर उठे हैं, जिसमें एक बड़ा मामला 100 किलो सोने का है कि वो मतलब हवाई अड्डे से वो इधर उधर हो गया, जिसमें कि जो कुछ जो सरकार समर्थक राजनेता खासकर माधव नेपाल और बाबूराम भट्टराई, इनका कोई संपर्क होने की बात निकल कर आई और वो एक बड़ा मुद्दा बना। और बीच बीच में लगातार इस तरह के मामले आते रह रहे हैं और पिछली सरकार के भी ऐसे मामले आए थे। तो अभी तक तो इसको इस रूप में ही देखा जा रहा है कि जैसे लोकतांत्रिक राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का संबंध जैसा दुनिया भर में होता है, वैसा ही नेपाल में भी है, उससे अलग बहुत नहीं देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई बोफोर्स जैसा मामला उछल के जिसके जरिए एकदम सरकार जाना ही जाना है, पूरे देश में गली गली में लड़ाई शुरू हो गई है, ऐसी तो स्थिति फिलहाल मुझे नहीं लगती है। अभी उस तरह का कोई बम्बास्टक मामला अभी नहीं हुआ है।
जी चंद्रभूषण जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि जो लोकतंत्र है नेपाल का, उसके सामने कई चुनौतियां हैं और वहाँ के नेताओं को ये ध्यान देना होगा कि बार बार जो है अस्थिरता ना पैदा हो राजनीतिक। और आपने ये भी कहा कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इनमें इतना दम नहीं है कि जो राजा ज्ञानेंद्र वहाँ के थे उनको फिर से सेंट्रल फिगर वो बना सकें और बीच में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।